पृष्ठ संख्या 128। हिटलर और नाजी लोगों ने नित्से से ही अपने विचार लिए थे और उनका कहना था कि हिटलर की विचारधारा का जन्म नित्से के विचारों से हुआ। डॉक्टर साहब, हिंदुत्व के विचारों की तुलना नाजी राजनैतिक विचारधारा से करने लगे थे। उनके अनुसार हिंदुत्व की नैतिकता विशुद्ध रूप से सामाजिक है। नैतिकता का स्तर मूलतः परंपरागत और कष्ट भरी है। इसमें निर्दोषता व नियत की पवित्रता नहीं है। हिंदू एथिक्स जो उच्च कुलीन लोगों की पूजा का नाम है, डॉक्टर साहब इस बात से सावधान थे कि उनके ऊपर आरोप लग सकता है कि हिंदू धर्म दर्शन के बारे में उन्होंने अपनी राय बनाने में केवल स्मृतियों को ही आधार क्यों बनाया। उन्हें थोड़ा उपनिषदों की ओर भी दृष्टि दौड़ानी थी। इसमें आत्मा की समग्रता, मनुष्य मनुष्य में विभेद के खिलाफ, स्त्री के स्थान के बारे में कुछ उल्टी दृष्टि है। किंतु डॉक्टर साहब का मत है, उनका आग्रह था कि मैं धर्म के दर्शन की परीक्षा कर रहा हूँ, मैं हिंदू दर्शन की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। उपनिषद हिंदू दर्शन है और स्मृतियों में हिंदू धर्म दर्शन की संहिताएं हैं। जिन्होंने व्यावहारिक जीवन में अपना व्यापक असर और जिसके कारण हिंदू समाज बुरी तरह विभत्स हो गया। हिंदुत्व के सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था पर उपनिषदों का रंच मात्र प्रभाव है। इनका नैतिक व सामाजिक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। यह अति प्रभावहीन आत्मविभोर करने वाली स्थापनाएं बनकर रह गईं। वे कहते हैं, मैक्स मूलर के शब्दों में, उपनिषद का दर्शन अपने आप को जानो इतने में ही रह कर सिमट आया और इसी अधूरी रचना के कारण हिंदू समाज पर व्यापक प्रभाव न छोड़ सका। केवल सत्य को जानने से काम नहीं चलेगा, सत्य को प्यार करने का ढंग सीखना होगा। दर्शन स्टैटिक है और धर्म साइनेमिक, ब्रैकेट में प्रवहमान, ब्रैकेट क्लोज। दर्शन केवल सत्य से साक्षात्कार करता है, जबकि धर्म सत्य के साथ प्यार सिखाता है। किंतु हिंदुत्व ने इस परिभाषा को बिगाड़ दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ, हिंदुत्व तुम्हारा नाम विषमता है, विषमता ही हिंदुत्व की आत्मा है। उन्होंने हिंदुत्व के सामाजिक धारा के मूल तत्वों की जमकर आलोचना की। उनका बार बार कहना था कि हिंदू सामाजिक धारा में व्यक्तिगत मेधा और व्यक्ति को न्याय के समक्ष समानता के अधिकार नहीं थे। वर्ण प्रधानता ने समूचे सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया है। संपूर्ण प्रतिभा की कसौटी वर्ण आधारित है। कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा, यश और सभ्यता का इकरार केवल इसीलिए है कि वह किसी वर्ण विशेष में पैदा है। कोई व्यक्ति कष्ट झेलने के लिए इसीलिए मजबूर है कि वह किसी नीच जाति में पैदा है। प्रतिभा और अकुशलता दोनों स्वाभाविक लक्षण नहीं, अपितु जन्मना आरोपित गुण अथवा दोष हैं। मनु ने वर्ण आधारित उपनयन संस्कार की व्यवस्था दी। यदि ब्राह्मण परिवार में कोई उत्पन्न है तो उसका उपनयन 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में करना चाहिए। अर्थात जो द्विज जातियां थीं उनमें भी विभेद की स्थिति है। उनके अनुसार तीनों द्विजों जातियों में पोशाक, पहनावा, आभूषण आदि में भी भेद किया गया तथा उपनयन संस्कार की पद्धति और प्रक्रिया भी अलग-अलग निर्धारित की गई। वेद का अध्ययन करने की तैयारी करने वाले ब्रह्मचारी को वर्ण आधारित प्रक्रिया निर्धारित की गई। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 84। दो वही कौमा पृष्ठ संख्या 86, तीन वही कौमा पृष्ठ संख्या 49। पृष्ठ संख्या 129। डॉक्टर अंबेडकर आग्रह करते हैं कि शूद्र और अतिशूद्र तो उपनयन संस्कारों से प्रथमतः वंचित ही किए गए, किंतु जिन्हें इन संस्कारों का अधिकार प्राप्त था उनमें भी इस तरह के भेद करने के क्या कारण हैं? उनका उत्तर है कि यह हिंदू मन मस्तिष्क की उपज है जो हर वर्ग में भेद उत्पन्न करने और सभी को एक दूसरे से अलग करने के भाव से रचा गया था। अलगाव तथा स्वयं में ही महफूज रहने की तीव्र भावना का यह कलुषित रूप है। प्रारंभ में तो यह वर्ण के नाम से केवल चार था, किंतु अब गणना के अनुसार 2,000 से 3,000 के बीच जातियां हैं। इस तरह विघटन के भाव ने सामाजिक एक के जीवन को असंख्य कर दिया है। उन्होंने हिंदू सामाजिक पद्धति की आलोचना करते हुए आगे कहा है कि चरणबद्ध विषमता इसके ढांचे का बुनियादी आधार है। चारों वर्ण एक दिशा में एक धरातल पर नहीं है, यह खड़ी लकीर रूप में है, सर्वथा एक दूसरे से विषम। उन्होंने मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के उद्धरण देकर यह सिद्ध किया कि सामाजिक, आर्थिक, कृषि, व्यापार, उद्यम सभी क्षेत्रों में यह गैर बराबरी आरोपित है और उसकी जड़ें केवल इसीलिए गहरी होती गई कि उन्हें शास्त्र द्वारा प्रमाणित किया गया। इसीलिए उनका निष्कर्ष था कि हिंदू समाज व्यवस्था व्यक्ति नहीं वर्ण आधारित है। इसमें सभी वर्ग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं। इसमें वर्गों के कृत्य और स्तर निश्चित और फिक्स हैं। किसी तरह का परिवर्तन क्यों ना हो, समाज में इंसानी हैसियत जन्म द्वारा निर्धारित है। जो समाज में प्रथम श्रेणी का नागरिक पैदा हुआ वह अंत तक प्रथम रहेगा। जो अंतिम व्यक्ति के रूप में पैदा है वह अंतिम ही रहेगा। इंसानी नियति पूर्व निर्धारित है जो दूसरे किसी समाज में नहीं है। उन्होंने पुनः मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए कहा कि ब्राह्मण प्रजापति ब्रैकेट में ब्रह्मा ब्रैकेट क्लोज के मुख से पैदा हुआ वह प्रथम अवतार है, इसीलिए प्रथमतः वेद को अंगीकार करता है। इसीलिए आधिकारिक रूप से इस संपूर्ण सृष्टि का वह मालिक है, ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का नियंता है आदि आदि। उन्होंने मनु के विचारों की तुलना नित्य के विचारों से किया, क्योंकि मनु के अनुसार ब्राह्मण सुपरमैन है और शूद्र साधारण प्राणी। नित्य भी ईमानदारी के साथ मानव की नई रेस स्थापित करने में विश्वास करता था, जो सुपरमैन की ही रेस हो। उनकी धारणा थी कि भारत के अनेक समाज सुधारक अपने अनंतकाल के प्रयासों के बावजूद हिंदुत्व के इस धरातल को तोड़ नहीं सके। उनके अनुसार यह मत अत्यंत भ्रामक है कि अंग्रेजों के आगमन के साथ विश्व की सुंदर हवा भारतीय समाज में प्रवेश कर गई है। मनुस्मृति आदि की बातें अब पुराने योग पंथियों के विचार मानकर नए सभ्य समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया है। वे ऐसे विचारों से सहमत नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि हिंदू सामाजिक बनावट हिंदुओं का स्वभाव बन गई है और इस धारा को वे अभी भी पूरी ताकत के साथ मान रहे हैं। डॉक्टर साहब दृढ़ता पूर्वक ऐसा मानकर चलते थे कि जातिगत उच्चता और नीचता स्थायी रूप से समाज में रच बस गई है और इसे खत्म कर पाना एक कठिन काम है। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 102। दो, वही कॉमा पृष्ठ संख्या 115 3 वही कॉमा पृष्ठ संख्या 123।